क्यों हो जाता है, उस शरीर को छोड़कर फिर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए आत्मा जो है अजर अमर और ये शरीर वस्तुओं के समान, ये मशीन के समान है कि उसके पूर्जे जब खराब हो जाए तो उसको फेंक देते हैं। इसी तरह से इस शरीर को बदलते ही आत्मा अजर अमर जो कि नित्य सनातन करती
वह न मोटा है न पतला है।
आत्मा न तो मोटा है न पतला है, न उसकी कोई जाति है न किसी में है, वो सदा एक रूप है। इसलिए आत्मा को कहा गया है कि वह भगवान का सेवक है, सेवा ही उसका धर्म है, वह नित्य सच्चिदानंदमय है, उसके अंदर आनंद है, आत्मा के अंदर सत्ता है, आत्मा ज्ञानमय है। इसलिए संसार में आए हुए आत्मा हमेशा नई नई चीज को नए नए ज्ञान को जानना चाहता है और आत्मा अपने सत्ता को बनाए रखना चाहता है, ना कभी खोना चाहता है। और आत्मा आनंदमय है, इसलिए संसार में आकर के भी सदा सर्वदा आनंद का खोज करते हैं कि वह वास्तव आनंद नित्य आनंद कहां मिले। परंतु संसार में हम लोग असक्त होकर के इन विषयों में उस चिर आनंद चिर शांति को ढूंढते हैं। संसार के जितने भी वस्तु हैं वे सब नाशवान है, जिसको हम देख रहे हैं इन आंखों से ये समस्त नाशवान पांचवती वस्तु है, परिवर्तन के हैं। अतः इसमें जीव कभी सुखी नहीं हो पाता है, न कभी शांति लाभ कर सकता है। इस शरीर के अंदर में आत्मा रहती है, वो कैसे रहती है, जैसे कि एक मूंगफली ऊपर का छिलका होता है उसके अंदर एक पतला छिलका है, उसके अंदर दो दाने। इस प्रकार ये स्थूल शरीर है, हड्डी मांस चमड़ी है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त का सूक्ष्म शरीर। उस शरीर के अंदर में आत्मा और परमात्मा दोनों ही निवास करते हैं, परंतु परमात्मा जो है साक्ष्य रूप में है, जीवों के कर्मों का फल प्रदान करते बेकरी संसारी दुख कष्ट जन्म मृत्यु ये सबको भोग नहीं करते। जीवात्मा इस शरीर में आकर के इस शरीर में अहंकार अभिमान के कारण इसी में आसक्त होकर के दुख कष्ट सुख दुख लाभा लाभ जय पराजय मान अपमान जस अपजस को भोग करता है। इस कारण अपने को दुखी समझता है, अपने को सुखी समझता है, इस जन्म मृत्यु में आदिष्ट रहता है। चूल्हे के अंदर तो चूल्हे के ऊपर में बर्तन चढ़ाया है, बर्तन में आपने पानी डाल दिया, पानी के अंदर में चावल रख दिया तो थोड़ी देर में वो चावल पक जाता है। चूल्हा चूल्हे में भट्टी में आग जल रही है, वो आग चूल्हे में उसके ऊपर में बर्तन रखा गया है, बर्तन में आग लगता है, उसमें गर्मी लगने से उसके अंदर पानी जो है पानी खोलने लगता है और पानी के खोलने से उसके अंदर जो चावल रखा हुआ है वो चावल जल जाता है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर में आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, नित्य सनातन वस्तु, परंतु इस शरीर के अंदर होने के कारण इस संसार के सुख दुख लाभ लाभ यह पराजय जो पूर्ण शरीर के द्वारा अनुभव होता है शरीर के मन को अनुभव होता है, मन के द्वारा बुद्धि को और बुद्धि से आत्मा ये सब अनुभव करती
है। आसक्ति मूल कारण है, नहीं तो शरीर में रहने से भी नहीं होता।
इसलिए यह आसक्ति ही उसका मूल कारण है कि आत्मा के शरीर के अंदर होते हुए आसक्ति के कारण इस शरीर के प्रति आसक्ति, मन के प्रति बुद्धि के प्रति आसक्ति, इसके प्रति आसक्ति होने के कारण
दुख सुख भोगता है,
दुख सुख सुख दुख को भोग करता है और इससे अभिभूत हो जाता है इस संसार में। इसलिए भरत महाराज जी कहते हैं हे राजन रघुनंदन, इस संसार में लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, जब सुख के लिए प्रयास करते हैं तो जीवन में जितना ही बढ़ते जाते हैं उतना ही उसके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्र ये सारे को जो छह शत्रु ये जीवन में आ जाते हैं लोग उसी के वशीभूत हो जाते हैं शरीर के प्रति आसक्ति के कारण, कभी काम वासना में, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, कभी मौत और मात्सर्य में डूब जाते हैं। इसके वशीभूत भूल करके लोग जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसे वैसे फल को भोगते हैं, इसलिए और इसमें दुखी हो जाते हैं। लोग संसार धर्म को आश्रय करते हैं, संसार धर्म पालन करते हैं, रजोगुण तमोगुण के द्वारा अहंकार अभिमान में आविष्ट हो जाते हैं। उस समय उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसमें अविष्ट होकर काम क्रोध लोभ मोह के वश को छोड़कर इस संसार की माया की सेवा में लगे थे। इस प्रकार माया में आसक्त हो करके इस प्रकार अज्ञान मोह में डूब जाते हैं कि उसे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उस समय शरीर के लिए भय, रूपे कैसे धाम दौलत के लिए भय, और बंधु बंधुओं के लिए भय उपस्थित होता है। भगवान तो भूल जाता है, बुद्धि विमर्य हो जाती है, डमाडोल हो जाती है कि किधर जाए, क्या करें, नहीं करें, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई स्थिर नहीं कर
पाता।
इसलिए बुद्धि विमर्य होता है, किन कर्तव्य विमूल किधर जाए, कहाँ जाए, क्या करें, स्थिर नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में भी भटकते रहते, ऐसे संसार में आसक्त हो करके ये गृहरूपी अंदर रूप में इस प्रकार डूब जाते हैं। जैसे कि भरत महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है, चलते चलते पीछे से बाघ ने उसे आक्रमण किया, वो दौड़ता हुआ गया ये कुएं के अंदर जिसमें पानी नहीं, और उसके दीवार में पेड़ की डालियों से झाड़ी जैसे बन गया, कूद करके पानी पेड़ की डाली पकड़ ली और उसी में लपेट गया। कुएं जैसे ही लटक गया कि इतने में बाघ आया, बड़े जोर से गर्जन किया, और नीचे एक सांप था, उसने भी फट उठाए और फौंक फौंक करने लगे, और ऊपर में तो नीचे में तो जिस पेड़ की डाली को पकड़ करके लटक रहा है उसमें भी मधुमक्खी की क्षमता लगी हुई है, चार और मक्खियां मक्खी अब काटने लग गई, घेर लिया। जिस डाल को पकड़ करके रखा हुआ है उस डाली को दो चूहा काटने लगे। इस प्रकार ऐसी स्थिति में संसार में पड़ेगी उन्होंने गृहरूपी अंधों को, हम लोग ये घर बना करके इस संसार में आकर ये गृह निर्माण करके उसी के अंदर प्रवेश करते हैं। बंधु बांधव आती है सजन, ये संसार के मधुमक्खी की क्षमता है, इस मनुष्य शरीर रूपी पेड़ की डाल को पसंद करके हम लटक रहे हैं कि इस शरीर के द्वारा हम सुख शांति भोग करें, परंतु सुख शांति नहीं मिल पाती, क्यों, ऊपर जमराज हमारी चोटी को पकड़े लिए और कामरू के स्वर को फांस फांस करके सनक उठाए दिए, कभी भी हमें काट देंगे जमराज, कभी भी हमें पछाड़ मारेंगे, हमारे मृत्यु अनिवार्य है, चार ओर से मृत्यु घिरी हुई है,
दो चूहे काट रहे हैं,
और उसमें भी दो चूहे उस शरीर रूपी पेड़ को, पेड़ के डाले को काट रहे हैं, इस शरीर की जो आयु है इस आयु को काटते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी आयु तो 50 हो गई है, हमारी आयु 60 हो गई है, वही नहीं, ये आयु समाप्त हो गई है 60 वर्ष। दिन और रात ये दो चूहे मिलकर ये आयु को खेल करते जा रहे हैं। इसी प्रकार थोड़ा सा समय बचा हुआ है, किस समय मृत्यु आएगी कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति में जब तक समय है तब तक बुद्धिमान पुरुष आत्मकल्याण की चिंता करेंगे। इसलिए ये संसार मायावर है, जान करेंगे गुरु के चरणों में आश्रय लेकर एकांतिक भक्ति के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करें, इससे अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं। ये संसार दुख है, इसके आसक्ति मोह को छोड़कर मनुष्यों को चाहिए प्रभु की आराधना करना। लोग संसार में बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई पानी में पानी देते हैं, कोई सूरज को पानी देते हैं, कोई दीपक दान कर रहे हैं, इन सब के द्वारा क्या फल होगा? थोड़ा सा कोई संसारिक फल मिल सकता है, परंतु पारमार्थिक कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि रघुवरण तपस्या न जाति, हे महाराज रघुवरण तपस्या के द्वारा प्रभु को पाया नहीं जा सकता है। न चैसे निर्वापनाथ गृह लोग पूजा पाठ करते हैं, उसके द्वारा कल्याण होगा ये भी नहीं। घर से निकल करके कहीं भाग जाते हैं, जंगल में पहाड़ पर्वतों की गुफा में छिप जाते हैं, वहां रहते एकांत वास करते, इसके द्वारा भी कल्याण होने का नहीं है। न क्षमता नहीं हो जगान में सूर्य केवल वेद पाठ करने से भी नहीं, और जल की अग्नि की सूरज की पूजा करने से भी नहीं होगा। बिना महत पात रजो भी सीखम, जब तक एक संत पुरुषों के महापुरुष के चौरों में अपने जीवन को लोछावर नहीं करते, अपने जीवन को उनके चौरों में अभिषेक नहीं करते, संपूर्ण रूप से समर्पण नहीं करते, तब तक आत्मकल्याण होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई ऐसे अनुभवी संत महापुरुष हो संसार से निर्भर, छात्र ज्ञानी भगवान के तिव्य अनुभूति को पाए हैं, ऐसे साधु के चरणों में यदि कोई व्यक्ति आश्रय ग्रहण करे तब उसके जीवन में वास्तविक कल्याण ही कल्याण है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। इसलिए हे महाराज, इस संसार के आसक्ति मोह को त्याग दे, इसमें कुछ रहा नहीं था, सार वस्तु को संत पुरुषों के चरणों में जाने से ही मिलेगा। भगवान श्री हरि की आराधना ही जीवन का कर्तव्य है, इसलिए यह दुर्लभ मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन में संसार से निकलने का एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और जितने प्राणी शरीर है वे सब भोग यानी है, उसमें केवल भोग होता है, मनुष्य जीवन में ही कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है। इस जीवन में ही साधना की भूमि हम साधना के क्षेत्र में इस धरती में आए, इसलिए यहाँ पर हमें ऐसी साधना करनी है कि इसी जन्म में हमें प्रभु की प्राप्ति कर ली है। इस लक्ष्य को केंद्र बिंदु को लक्ष्य करते हुए हमें जीवन में अग्रसर होना है, यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य। इस प्रकार भरत महाराज ने उपदेश किया है। हम लोग भी यदि श्रीमद् भागवत भागवत के इन कथा प्रसंग में भरत महाराज की कथा को अपनाए, इन शिक्षाओं को यदि ग्रहण करें जरूर हम सबका आत्मकल्याण होगा। मैं इन्हीं कथा के साथ में अपने पानी को विराम देता हूँ। वंशा तो पुत्र वंश कृपा सिंधु पवितानं पावने वैष्णवे
आप लोगों ने सुना भरत चरित्र श्रीमद् भागवत का एक प्रधान प्रसंग है। भगवान की आराधना कर रहे हैं, अपना जीवन का सब कुछ छोड़ दिया भगवान के ऊपर, सर्वधर्मान प्रत्यज्ञमान एकम शरणम, और देवी कैसे उनकी रक्षा कर रही हैं, उनसे क्षमा मांग रही हैं, ये देखिए यही दुर्गा जी है, भक्तों का कितना आदर करती है। इसलिए देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं,
और हमारा पूजा करने वाले हमारे परम धाम को प्राप्त करते हैं। जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, फिर वहां से वो लौटते नहीं है। इसलिए हम सोमवार करें चाहे रविवार करें चाहे और देवता देवियों को उपासना करें, उसे संसारिक भोग तो थोड़ा सा मिल सकता है किंतु वही भोग दुख का कारण होगा, ये समझिए। इसलिए प्रथम में यदि हरिवासर करें, हरिवासर माने एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि का व्रत यदि किया जाए तो अपने आप शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। सोमवार उन्हीं के लिए होगा, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगे, सारे देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि अप्रसन्न भी होंगे तो कुछ नहीं कर सकते, स्वयं भगवान का चक्र उनकी रक्षा करता है। दुर्वासा और अम्बरीश की कथा आप लोगों को याद होगी। तो इस तरह से एकांतिक रूप में भगवान का भजन करेंगे और ऊपर छोड़ देंगे, अपने जीवन की परवाह नहीं करेंगे, भगवान किस प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। यह रघुवर राजा उस समय भारतीय सम्राट थे, वो जा रहे थे कपिल देव के आश्रम में कुछ ज्ञान तत्व के लिए। भरत जी मिल गए और पालकी से उतरे, उसने पूछा आप कौन हैं? तो वही आपका वंश का बहुत पुराना चक्रवर्ती महाराज भरत हूं, जिसके नाम को भारत पा है। अरे आप भरत हमारे पूर्वजों में से, मैं तो उनकी गाथा सुनता हूं, मैं वही। और फिर जो हमारे समान ब्रह्मचारी जी ने तत्व सब सुनाया वो उनको सुनाया, इसके बाद में उनको भी बराज्य हो गया संसार से आसक्ति छोड़कर के भगवान का भजन करने के। सुनने का फल क्या है? एक समय महाराज विक्रमादित्य के दरबार में एक कपालिक आया। कपालिक समझते हैं नंग धड़ंग मतपान किए हुए और एक मरी हुए खोपड़ी को साथ में लेते हुआ आया और महाराज जी के दरबार में पहुंच करके कहा, मैं यहाँ पर बड़े सुनते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तो ये तो बताएं ये खोपड़ी जिसकी है वो खोपड़ी वाला जो था वो बुद्धिमान था या मूर्ख था? वहां पर आठ तो नवरत्न थे, एक कालिदास नहीं थे और बाकी सब लोग थे, महाराज जी थे, कोई उत्तर नहीं दे। अरे यही नवरत्नों की जवान मूर्खों की जवान, वो जा रहा था इतने में कालिदास जी आए। महाराज जी ने कहा जी महाराज थोड़ा सा बोल और खड़े जाइए, जरा इनसे पूछ लें, यदि नहीं जवाब देंगे तो आप जाए। इतने में कालिदास आए, कालिदास से पूछा गया, पूछा उन्होंने एक नारियल की सींक होती है नारियल के पत्तों की सींक ली और इसमें लगाया तो देखा जो उधर में निकल गया। आप लोग समझ गए इधर लगाया इधर निकल गया तो माने क्या? ये बड़ा वज्र मूर्ख था, जो कुछ सुनता था इधर से और इधर से निकाल देता था। यदि यह सींक यदि भीतर चली जाती तो इसका मतलब है वो सुनकर पर गौर करके विचार करके ग्रहण करके तब काम को करता, तो ये बुद्धिमान होता। तो ये वज्र मूर्ख था, सुन करके वो खा लेते वो बहुत सुंदर। मैं पत्र से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप लोगों को इसमें हम लोग कथाएं सुन रहे हैं, पैसे आप ही में लिए पैसे का प्रश्न नहीं रखते, हम चाहते क्या है हमारी कथाएं इस काम से इस काम तक निकलना चाहिए। बहुत परिश्रम करके देखिए वर्षा हो गई है, सब लोग आ रहे हैं, हमारी बातें इतनी दूर से भारत से इन चीजों को ले आया और आप लोगों को दे रहा हूं, कहीं इस काम में लिया इधर यहाँ सभागृह से निकले और निकाल करके चले गए और फिर वही आसक्ति का लंगर उठाया नहीं तो फिर क्या हुआ? इसलिए जिन बातों को कह रहे हैं उस पर गौर करें। अच्छा अभी तो नौजवान हूँ, अभी लड़की हूँ, नौजवान हूँ, पीछे करूंगा। आज कर तो काल कर, काल करो तो परसों, क्या खटखट में पड़े हुए हो? समय पड़ा है बस, आज न कल न परसों करेंगे। बूढ़े होंगे तब करेंगे, कह रहे हैं ऐसा मत सोचो, काल करो तो आज कर, आज करो तो अब, पल में पल हो यदि बहुत करो गे, पल में पल हो जाएगा कब करेगा, आज ही से जो सुन रहे हैं आज ही जाए कष्ट का नाम, प्याज लहसुन छोड़ दो, मांस मछली यदि खाते हो छोड़ दो, घर का साथ काम करो, भगवान से संबंध रख करके मैं उनका दास दासी हूँ, हमारे परिवार सबका पालन पोषण सब करो, किंतु सत्य गुण का अवलंबन करते हुए सत्य शुद्धि आहार शुद्धि सत्य शुद्धि, भोजन में शुद्धि नहीं रहेगी तो जिस भोजन से वो खाएंगे वो रक्त होगा, रक्त से मेद मज्जा होकर के रिद्ध होगा और उसी के द्वारा बुद्धि बनेगी, यदि सुअर का मांस खाया तो सुअर की बुद्धि होगी, कुकर का मांस खाया या बकरी का तो काम जैसा बुद्धि होगी अवश्य में, प्याज लहसुन खाएंगे तो वैसे ही तांत्रिक बुद्धि होगी, अपने भाई को और पिता को भी बिना काटे से नहीं छोड़ेंगे, पैसे के लिए दमड़ी के लिए सारी चमड़ी चली जाएगी, इसलिए इन बातों को सुन करके आज ही भाई भजन करना बहुत परिश्रम नहीं है, अरे सवेरे तुम भगवान को भजन मैं तुम्हारा, और एक बात राम कह सकते, एक लाख श्लोक का बनाया हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण, राम के रहते हुए, राम के बाद में नहीं, और उसी के लिए देवता मनुष्य और राक्षस लोग तीनों लड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे, जो लेगा और जो तपान करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, इसलिए तीनों लड़ने लगे, भगवान संकट दयालु वहां पर पहुंचे, बोले भाई लड़ो मत, मैं उचित रूप में इसका बंटवारा कर देता हूं, 29 लाख 25 लोगों को तीन माह भाग में विभाग करके 33,000 मनुष्यों को और राक्षसों को और पशुओं को और देवताओं को बांट, अब रह गया 1,000, 1,000 को उन्होंने
333
भाग में विभाग करके फिर दे दीजिए, अब रह गया कितना, एक श्लोक, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं अनुसूत छंदों, वो रामायण वो जो है अनुसूत छंदों में है, 4 चरण होते हैं, एक एक चरण दे दिया, अब एक चरण बच गया, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं और 3 आदमी है तो 2-2 अक्षर दे दिया, तब बाकी कितने रह गए,
2
शंकर जी ने कहा ये घड़िया ये मोहित मैं नहीं दूंगा, ये मैं दूंगा और यही राम नाम है, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य यही है कृष्ण नाम का, बस कलयुग केवल नाम आधार, यह नाम ही आधार, कुछ नहीं होता है, यज्ञ नहीं होता है, कोई बात नहीं है, तपस्या नहीं होता है, इसे भगवान प्रसन्न नहीं होते, यह अभी तो बच्चे ने बतलाया, तपस्या से दान से पुण्य से, यह अभी समय रहता तो और भी बहुत बतलाता, यह दान करने का क्या फल होता है, एक आदमी ने बनाया अस्पताल लाखों करोड़ रुपए बना करके, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर सब नियुक्त किए गए, बड़ी चिकित्सा होने लगी, बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारे रुपये से ये चल रहा है, बिना पैसे की चिकित्सा हो रही है, और उसमें एक डकैत आया, उसने 50 आदमियों को मार करके आया किंतु गोली लगने से घायल हो गया, उसने उस लोग तो जानते नहीं वो कहीं गिरा हुआ था, एक व्यक्ति दयालु व्यक्ति ने उसको उठाया और उसी अस्पताल में भर्ती कर दिया और कुछ पैसे देकर के उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी, वहां पर इलाज हुआ, इलाज अच्छा होने के बाद में उसकी प्रतोध की भावना उठी, जिस व्यक्ति की गोली से जिसके घर में उसको गोली लगी और जिन लोगों को मारा था, और कहा इस अब इसके बाद में मैं जा सके अपने दल बल के साथ में और सबको मारूंगा, और अपना फिर दल इकट्ठा किया और कुछ दिनों के बाद में घर पर धावा करके और उसके घर वालों को 50-60 आदमियों को फिर गोली से भून करके फेंक दिया। अच्छा ये जो गोली का जो भुना और जो पीछे से जो इतनी हत्याएं हुई इसका दायित्व किस पर है, इसका फल कौन सा करेगा, जिसने मारा वही नहीं, वही नहीं जिसने अस्पताल बनाया जिसमें कि वो बचा,
वो भी इसका भोग करेगा। अस्पताल बनाया ठीक है, उसका जो भला हुआ उसका अलग से फल भोग करेगा और ये बुरे कर्मों का फल भी उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सभी कामों में कुछ भला और बुरा होता है, उसको भोगना पड़ता है। भगवान उसको सब कुछ मिलता है। स्कूल बना रहे हैं बड़े, हमारे यहाँ 2000 लड़के 3000 लड़के, इसमें से 4 आदमी जगह छूटे, 4 जगह हुए और लोगों का अच्छा हुआ, उसका तो पुण्य फल आपको मिला। और जो 4 जगह छोड़ के लोगों को मारा उसका फल किस पर जाएगा? उस पर भी जाएगा, जो जिस स्कूल में पढ़ा जिसने बनाया उसके ऊपर भी आएगा। महाराज मृग रोज कोटि कोटि गायों का दान करते थे, सोने से सिंगे मणि और पाए में पैर में खूब चांदी के और रेशमी वस्त्र सोने से अलंकृत उनके पीठ पर और दूध से अभी बछड़ियां गाय की और उसके साथ में दान करते थे, जो 20-25 किलो 30 किलो 40 किलो दूध देते थे। और ऐसे ही नजर इतना किया दान जो तारों का गिनना सहज है, पृथ्वी के बालू कण को गिनना भी सहज है, कि तो उनके गायों की गलती करना पड़ा था। लाखों वर्षों तक दान किया, फल ये हुआ कि एक दिन जिस गाय को दान कर चुके थे वो दूसरे एक दल में मिल गई जिसको वो दान करना चाहते हैं। वो ब्राह्मण कहा ये तो मेरी गैया है, मैं मुझे दान नहीं दिया था। और वो कहता जी नहीं तो ये तो महाराज ने अब उसको दान दिया। दोनों लड़ने लगे महाराज के पास में, महाराज आप उचित न्याय करके हमारी गाय दिलवा दीजिए। वो कहता है ये गाय मेरी है, ये मेरी है। और महाराज किसी भी राजा ने कहा कि भाई कोई बात लड़ने की जरूरत नहीं, हमने ही तो दी थी, हम इसके बदले दूसरी गाय दे देते हैं, तुम ले लो संतुष्ट हो जाओ, तुमको भी एक गाय दे देते हैं। नहीं महाराज, हमको जो गाय दिया था वही गाय देंगे, दूसरी गाय नहीं है। अरे इसके बाद में 100 लो, 1000 लो, 1,00,000 गाय ले लो, तभी संतुष्ट हो जाओ। नहीं महाराज, हम लोग ब्राह्मण नाम बोली गाय देंगे। वो भी अपनी जीत पर अड़ गया। ये भी फल हुआ कि दोनों ने मिलकर के अभी संपाद किया, गिर गिर की तरफ में तो रूप बदलता है, अपने भावों को बदलता है, इसे जाकर जीवित हो जाए। क्या फल हुआ उनको? जो फल गाय ध्यान दी उसका तो अलग से फल स्वर्ग में जाए। अब फिर स्वर्ग का फल भोग करने के बाद में ये बुरे कर्मों का ये जो भी संपाद उसको भोगना पड़ेगा। और होकर के गिर गिर होकर के सौभाग्यवश वो आया द्वारका के एक कुएं में, प्रफारी गिरगिट होकर के 1,00,000 वर्ष तक दुख भोगता है। कृष्ण के बच्चे शाम और प्रद्युम्न इत्यादि सब बच्चे सब खेल रहे थे, उनको प्यास लगी, कुएं में देखा अरे ये तो कोई जानवर है, पानी तो दिखाई नहीं पड़ता। सब लोगों ने बहुत चेष्टा की उसको निकालने के लिए, नहीं निकल सका। कृष्ण के पास में गए, अरे अद्भुत एक जानवर तुम्हें पड़ा है पिताजी, जरा देखिए। तो वो आए, वो तो जानते ही हैं सब कुछ, आकर के अपने पैर को नीचे लटकाया, उसके सिर पर स्पर्श कराने के साथ ही साथ एक जरूर देवता था, अत्यंत सुंदर पुरुष उसमें से निकला और कृष्ण की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके सौ स्तुति करके जाने लगा। कृष्ण ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा आप कौन हैं और कैसे यहां पर पड़े? तो मैं महाराज मृग हूं, मैं आज से 1,000 वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले ऐसे गरीबों का रोज दान करता था और ऐसे ब्राह्मणों ने झगड़ा करके एक गाय के लिए हमको अभी संपाद कर लिया और आज उसी के वजह से मैं गिरित इसमें पड़ा हुआ था। वो तो आपके चरणों की चरणों के स्पर्श से मेरा आज उद्धार हो गया, नहीं तो मान लीजिए कब तक ये भोग करता है। कृष्ण ने कहा देखो ये तुम तो भोग रहा था किंतु ये हमारा संग कैसे हो गया? अरे उस जन्म में तुमने एक भागवत की पोथी लिखवा करके किसी से और एक किसी ब्राह्मण को दिया था, उस भागवत की कथा सुनने से और पढ़ने से उसका जो फल हुआ उससे तुम हमारा संग पा गया, हमारे संग का ऐसे ऐसे कर्म से बंधन में पड़ेंगे आसक्त होकर के, उससे कुछ नहीं होता, कुछ संसारिक लाभ होगा, कुछ धन जन पुत्र परिवार संपत्ति, किंतु यथार्थ का कल्याण नहीं होगा, वह होगा देवी भजन न भवजी यह सिद्धांत है। भले चमक के कछुए के तीर पर तेज उठ जाए, भले ही आकाश में बहुत से फूल खिल जाए, चाहे भले ही बर्फ से आग पैदा हो जाए, चाहे भले ही हिम से अनल प्रकट पर हो, हिम से आग प्रकट हो सके, अंधकार को कभी न सारा अंधकार सूर्य को भी निकल जाए, बारी बसे पर हो ये कृष्णिकता से भी बनते दिन भर भजन न हो सकता, यह सिद्धांत भगवान का भजन करें करते हैं सब कुछ सही है, कोई भी आपत्ति नहीं है, सभी भगवान के दास हैं, किंतु थोड़ा सा भजन का भाव उसमें मिला करके का। अब थोड़ी सी राम की कथा पर आ रहा हूं, आज राम की कथा का समापन करके कल से कृष्ण की थोड़ी सी कथा का रस प्रारंभ करा करके हम अपनी कथा को समाप्त करें।
Hallelujah, yeah, yeah.